पता है कि कंप्लेन करनी है। इस लड़के को दरबदर कर दिया है, 20 साल तक इससे झूठ बोला गया है, 20 साल तक इसे धोखे में रखा गया है, 20 साल तक इसे इधर उधर घुमाया गया है, 20 साल लावारिस रखा है, 20 साल तक ये सब कुछ करने की क्या सजा होती है मालूम होना चाहिए। बताओ इन्हें, मुझे क्या देख रहे हो?
नहीं।
क्या?
अम्मी जान ने कभी भी हमें भूखा नहीं रखा है, किस्मत भी हमारी खराब नहीं थी, हमारी ख्वाहिशें भी पूरी की हैं, लेकिन बस हमसे झूठ बोला था। झूठ तो मैंने भी उनसे बोला था, बस सिर्फ फर्क यह है कि जब बच्चे झूठ बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम, बेवकूफी करते हैं, नादान होते हैं, तो उनसे कोई नहीं पूछता, लेकिन जब बड़े किसी और से झूठ बोलते हैं तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद होता है। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अपनी वालदा की कंप्लेन नहीं करूंगा, चलता हूं मैं।
क्या हो गया? क्या दोबारा करंट लग गया तुम्हें?
जाओ जाके सब रसीदें ले आओ। हाँ बोलो नाजगुल।
हेलो मोहम्मद, पता भी है तुम्हारा, कहाँ हो इतने दिनों से? जब फोन करती हूँ तुम्हारा मोबाइल बंद होता है, जवाब नहीं देते हो।
एक दफा फोन नहीं उठाता फिर फोन करती हो, दूसरी दफा फोन नहीं उठाता फिर फोन करती हो, तीसरी दफा फोन नहीं उठाता तो फिर फोन कर देती हो।
मैं काम कर रहा हूँ तभी फोन नहीं उठाया मैंने।
फोन करके कुछ मंगवाना था क्या?
अम्मी अस्पताल में दाखिल है, जब भी उन्हें होश आता है तो सिर्फ तुम्हें याद करती है।
उन्हें क्या हुआ है? पूछ रहा हूँ उन्हें क्या हुआ है, कौन से अस्पताल में हैं?
कल परसों मैं आपको फोन करूँगा।
अस्सलाम वालेकुम।
जी अच्छा,
जरा एक दो दिन रुक जाए, उसकी तबीयत कुछ।
सर माफ कीजिएगा, मुझे फोन आया है वालदा अस्पताल में है, मुझे फौरन जाना होगा, इजाजत दे।
छीन लिया है मुझसे, छीन लिया है।
क्या छीन लिया है फिरदौस साहब, किसने छीन लिया?
औरतें दुनिया में पहले सुकून था, उस वक्त कोई असलहा नहीं हुआ करता था, ना बंदूक ना कोई राइफल ना कोई गोलियां थी, जब उनके पास एक ही असलहा था, सिर्फ एक नजर देखेंगी और बिल्कुल फव्वारे की तरह अपने आंसू बहाने लग जाएंगी। ऐसा कौन सा मर्द है जो औरत के आंसुओं के सामने आकर खड़ा हो जाए? हम मर्द क्या हैं? कुछ भी नहीं। अगर हम कुछ ज्यादा भी करेंगे तो सिर्फ दिल पर हाथ रखकर कहेंगे आ, मतलब कि हमारी हालत खराब है। उसके बाद क्या होता है, बेटा सामने खड़ा हुआ देखता है कि मेरे बाबा दिल पकड़े हुए। बच्चों शोर ना करो, मेरे बाबा की हालत खराब है और बेटी को कहा जाता है कि तुम अपने बाबा की तबीयत का ख्याल करो। हम बेवकूफ मर्दों का सिर्फ ये एक ही हथियार था, उसे भी छीन लिया गया। अब उसकी मां बीमार होकर अस्पताल में दाखिल हो गई है।
हो सकता है वाकई बीमार हो गई हूं।
अच्छा, तुम नहीं जानते वो फितना है। अगर उसने इस लड़के को बहका दिया तो क्या होगा? सोचता हूं अगर वो दोबारा उसे बहकाकर मुझसे दूर ले गई तो मेरा क्या होगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा फिर?
अभी सो रही है क्या?
हाँ।
उन्हें अभी वार्ड में लेकर आए हैं, इसका मतलब है उनकी तबीयत ठीक है। तुम परेशान नहीं हो ना स्कूल? तुम भी कुछ देर जाके आराम कर लो।
नहीं, उनके पास ही रहूंगी, उस वक्त तक रहूंगी जब तक हम घर एक साथ नहीं चले जाते। मोहसिन, मुझे लग रहा है कि अब वो हमें छोड़ जाएंगी।
तुम्हारी वालदा एक बहादुर खातून है नाज़गुल। सच पूछो तो जिस दिन उन्होंने मुझसे कहा कि शादी को रोक देते हैं, मैंने हर तरीका सोचा सिवाय उसके जो तुमने मुझे बताया। तुम्हारी वालदा बहुत अच्छी है।
सच में तुम ये दिल से कह रहे हो? क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो उसकी शनाख्त नकली है?
रुको, पहले मैं तुम्हारी दूसरी बात का जवाब दे दूं। तुम्हारी शनाख्त नकली नहीं है, सिर्फ किसी और की शनाख्त पर जिंदगी गुजारी है, नकली नहीं है। और तुम्हारी पहली बात का जवाब, हाँ सच में मैंने ये बात अपने दिल से कही है। मैं तुम्हें पहले ही दिन से चाहता था, लेकिन जब मैं तुम्हारी वालदा से मिला तो खुद ही सोचने लगा कि ऐसी लड़की से शादी करना जो ऐसी माँ की परवरिश में बड़ी हुई हो, खुशनसीबी होगी मेरे लिए।
सच में?
हाँ हाँ सच में। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी ये सुना है, माँ को देखो और बेटी से शादी करो? नहीं सुना ना?
लेकिन तुमने तो मेरी वालदा को नहीं देखा था जब मुझे पसंद किया था।
नहीं नहीं, देखा तो था, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ, जब मैंने पहली बार देखा था तो उसी दिन सोच लिया था कि तुम्हें से शादी करूँगा।
और फिर जो तुम कह रहे हो इसका ताल्लुक शक्ल सूरत से है? कहते हैं माँ को देखो ताकि समझ जाओ कि जब तुम्हारी बीवी बड़ी उम्र की होगी तो किस तरह।
नहीं भाई, नहीं, मैं इस बात को नहीं मान सकता। कहते हैं कि माँ को देखो तो बेटी की सूरत के साथ साथ सीरत का भी पता चल जाता है, और यह हकीकत है।
चलो जाओ, तुम अपनी तरफ से मुहावरे नहीं बनाओ। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो।
अरे वो देखो, मोहम्मद
मोहम्मद मोहम्मद
बेहतर है तुम उससे अकेले जाके।
ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम, माफ कीजिएगा, मेरी वालदा यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो?
उनकी तबीयत कैसी है?
सो रही हैं।
क्या हुआ है उन्हें?
चलो बाहर चलकर बात करते हैं। तुम्हें उन्होंने 10 से ज्यादा फोन किए हैं। अम्मी मौत के मुंह से वापस आई हैं। कितनी दफा सोच रही थी। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? अम्मी को जब होश आ रहा था वो तुम्हारा ही नाम ले रही थी।
वो ऐसी हस्ती हैं जो अगर कहती थी कि रात हो रही है, मैं कहता था रात हो रही है। अगर कहते हैं दिन है तो मैं कहता था दिन है। अगर वो कहती जमीन गोल नहीं है तो मैं भी कहता था जमीन गोल नहीं है। उनकी ऐसी हस्ती थी, वो जो कुछ भी कहती थी मैंने उन पर कभी इतना सा भी शक नहीं किया। बाद में पता चला कि वही हमसे 20 साल से झूठ बोल रही हैं।
तुम क्यों इस बात को इतना बढ़ा रहे हो?
बड़ी बात है नाजगुल, हमारी कोई हैसियत नहीं है। मोहम्मद रुदबारी, सना बानो रुदबारी, फातिमा रुदबारी 20 साल पहले वो लोग मर चुके हैं। हम अभी मुर्दों में शुमार हैं नाजगुल।
अच्छा तो फिर क्या?
हम लोग कुछ भी नहीं है नाजगुल, सर से पांव तक झूठ और धोखे में हैं। किसने ये झूठ और धोखा दिया है? किसने हमसे झूठ और धोखा करवाया है?
तुम दूसरों को क्यों नहीं कह रहे? तुम अपने दिल से क्यों नहीं कह रहे? तुम क्यों नहीं कहते कि तुम्हें इस बात का अफसोस है कि तुम एक अमीर कबीर दौलतमंद दादा से, जो मशहूर और मारूफ हैं, उनसे दूर रहे हो, बेहतरीन कार से, बेहतरीन घर से, बेहतरीन ऐश से। हाँ,
तुम सच में ऐसा सोच रही हो? हाँ
तो फिर और क्या सोचूं मोहम्मद, इन कुछ दिनों में अम्मी मरने वाली थी, तुम्हारा पता तक नहीं था। तुम किस तरह चाहते हो कि मैं सोचूं? हाँ अच्छा, ये हमारे दादा चांद किस तरह के हैं?
कौन?
वही दादा चांद जो हमें 20 साल बाद मिले हैं। वही जो जिस दिन से तुम्हें मिले तुमने अपनी माँ बहन दोनों को अकेला छोड़ दिया है। वही जिसकी वजह से तुमने अपनी अम्मी जान से इतनी लड़ाई की, क्योंकि उन्होंने हमें इतने सालों उनसे दूर रखा। वही
फिरदौस साहब।
क्या उन्हें तुम फिरदौस साहब कहते हो?
हाँ।
किस लिए? क्या उन्होंने तुम्हें दादा कहने से मना किया हुआ है?
मैं खुद नहीं चाहता।
क्यों?
इसीलिए कि मैं नहीं चाहता। कोई सिनेमा की फिल्म है, 20 साल बाद एक शख्स सामने आए और कहे मैं तुम्हारा दादा हूँ, और फिर मैं उनके पास जाऊँ और कहूँ ओ हाय दादा जान, आपकी मुझे बहुत याद आती थी। ये जिंदगी का तरीका नहीं है नाजगुल। खुद मैं उन्हें दादा जान नहीं कहना चाहता, मतलब इस बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोचना चाहता।
अच्छा तुम उन्हें दादा कहो या ना कहो, लेकिन वो हमारे दादा तो हैं ना। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कैसे दिखते हैं।
बिल्कुल दूसरे दादाओं की तरह, बदअखलाक, अहमक, बातों को इतना लंबा करके सुनाएंगे और हर आदमी को नसीहत करेंगे।
दादा जान इस तरह के तो बिल्कुल नहीं होते हैं, वो सब अच्छे होते हैं, रहम दिल होते हैं, मोहब्बत करते हैं, ऐसे ही होते हैं।
वो अकेले ही ऐसे हैं। अच्छा बताओ, क्या अम्मी जान मुझसे मिलना नहीं चाहती?
अम्मी तो सोते हुए और बेहोशी में भी तुम्हें याद कर रही थी। किसने कहा कि तुमसे मिलना नहीं चाहती?
तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों रोक लिया, उनसे मिलने क्यों नहीं दिया?
क्योंकि वो सो रही थी।
हाँ तो उन्हें सोते हुए देख लेता।
अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं।
चलो।
आ जाओ तुम, ठीक है अब? आ जाओ देख लो।
जगा नहीं सकती।
क्यों नहीं अम्मी? अम्मी जान देखे मोहम्मद आया है।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान।
मुझे माफ कर देना।
मैं माफी चाहता हूं आपसे।
एक मिनट खामोश रहो। जो मुश्किलात मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को दी है उसके लिए माजरत चाहती हूं।
अम्मी जान
पता है तुम्हारे बाबा का क्या दिल चाहता था? उनका दिल चाहता था कि उनके बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से हो, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इस काम को किस तरह से मैं सिर्फ 20 साल की थी। मैंने उस वक्त वही किया जो मेरी समझ में आया, लेकिन मुझसे गलती हो गई है। तुम दोनों मुझे माफ कर देना। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान? आप हमारे लिए दुनिया की बेहतरीन अम्मी हैं। हमें क्या चाहिए था जो हमारे पास नहीं था? बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं खुद सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम लोगों का असली नाम तुम्हें वापस दिलवा दूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े करूंगी, जो भी करना पड़े। मोहम्मद बस मुझसे तुम कभी नाराज नहीं होना।
क्या कह रही हैं बीचा?
बस ये बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी।
मैं गलत करूंगा अगर आपसे नाराज होगा तो।
मैं अदालत जाऊंगी या मुझे जहां भी जाना पड़े जाऊंगी, जाके कहूंगी सब मेरी गलती थी, मेरे बच्चों की कोई गलती नहीं है। अपनी गलती की सजा के लिए तैयार हूं। मैं अदालत जाऊंगी या मुझे जहां भी जाना पड़े जाऊंगी, जाके कहूंगी सब मेरी गलती थी, मेरे बच्चों की कोई गलती नहीं है। मोहम्मद बस मुझसे तुम कभी नाराज नहीं होगा।
अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब।
कहाँ हो तुम माहिर बेटे?
सड़क पर हूँ।
सड़क पर क्या कर रहे हो?
मैं जा रहा हूँ।
तुमने तो कहा था कि तुम अपनी वालदा को देखने जा रहे हो।
गया था सर, गया था। अभी मैं अस्पताल से ही आ रहा हूँ।
तुमने मुझसे सिर्फ अस्पताल जाने की इजाजत ली थी, ना कि ये कि तुम सड़क पर घूमो। जल्दी वापस आ जाओ, हमें खाना खाने के लिए जाना है।
मतलब मैं मार्केट आ जाऊं?
नहीं, वहां नहीं, तुम पुराने शंगुलाबाद आ जाओ। पता तो है तुम्हें, जल्दी से मार्केट आ जाओ, वहीं से एक टैक्सी लो और फौरन मेरे पास आ जाओ।
ठीक है।
किसी मरीज से मिलने के लिए इतना वक्त बिल्कुल नहीं लगता। 5 मिनट ज्यादा हुआ तो 10 मिनट, जानते हो ना कितना टाइम।
अम्मी जान की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
ठीक हो जाएंगी।
उनसे ठीक से बात भी नहीं की जा रही थी। उनके चेहरे का रंग,
परेशान नहीं हो, औरतें जब चाहती हैं तो अपनी मर्जी से बीमार हो जाती हैं। ऐसे बीमार हो सकती हैं कि तुम देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे मलकुल मौत से बातें कर रही हो। ये बातें सभी जानते हैं।
अम्मी जान बीमार हैं फिरदौस साहब, मैंने उन्हें देखा है, उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी।
असल बात को तुम समझ ही नहीं सकते। हमारे पास सिर्फ एक ही बीमारी है और एक दवा के सिवा कुछ नहीं। जहनी दबाव और सिर्फ ड्रिप। डॉक्टर से कहो कि सर में दर्द हो रहा है तो कहेगा परेशानी से है। कहो कि दिल में दर्द हो रहा है तो कहेगा परेशानी से है। कहो कि पांव सुन्न हो रहे हैं तो कहेगा परेशानी से हो रहे हैं। कहोगे कि सांस नहीं लिया जा रहा तो कहेगा परेशानी की वजह से है। कहो कि बाल झड़ रहे हैं तो कहेगा परेशानी की वजह से है। कहो कि कान में आवाजें आती हैं तो कहेगा परेशानी की वजह से है। अब दवा क्या होगी? दवा सिर्फ ये होगी, वो तुम्हें फौरन एक ड्रिप लगा दे और तुम पानी की तरह पैसा बहाओगे। अगर वो इस तरह ना करे तो डॉक्टर बनने के लिए 20 साल पढ़ाई पर क्यों जाया करता? और जिस वक्त वहां पर मरीजों के लिए टोकन दिए जाते हैं, चावल के, चीनी के, दाल के, मक्खन के, दूध वगैरह के, तो एक टोकन ड्रिप का भी दे देते तो बात खत्म। सारे मरीजों की छुट्टी हो जाती और सब अपने घर चले जाते। समझे? क्या है?
कुछ नहीं।
क्या देख रहे हो? खाना खा लिया?
मुझे भूख नहीं है।
लग जाएगी। वनक की तरफ चलो।
जी सर, क्या ऑर्डर है आपका?
2 सुल्तानी चिल्लू कबाब।
ठीक है।
और कुबैदा ज़ाफ़रानी इजाफे के साथ।
ठीक है।
दही, सलाद, आम का अचार और 2 अंडे की जर्दियाँ।
ठीक है सर, बस थोड़ी देर में भी आपका ऑर्डर आ जाएगा।
मक्खन वाली प्याज याद से लेकर आना।
जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम।
ये लीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया।
ये लें। और कुछ चाहिए सर?
नहीं शुक्रिया। सुनो, ये दही खा लो, तुम्हारी भूख खुल जाएगी।
सर, मेरी वालदा चाहती हैं कि सब काम ठीक से हो जाए।
कौन से काम?
मेरा नाम और मेरी बहन का नाम वगैरह। कह रही हैं जब मैं अस्पताल से बाहर आऊंगी तो।
फिलहाल तो वो अस्पताल से बाहर ही नहीं आएंगी।
जब किसी काम का थान लेती हैं तो जरूर करती हैं। आप उन्हें अभी नहीं जानते। वो अगर...
अच्छा, मैं उसे नहीं पहचानता? देखो, अगर तुम औरतों को मेरे जितना जानते और अपनी माँ को भी मेरे जितना जानते तो समझ जाते कि मैं क्या कह रहा हूं। तुम उसे अभी नहीं पहचानते। अभी भी मेरे दिल में जो जख्म लगे हुए हैं वो उसी ने लगाए हैं। तुम उसे नहीं जानते। तुम्हारा बाप मेरा बहुत फर्माबरदार था, शरीफ था, मेरे घर की पली हुई फाख्ताओं की तरह उसने उड़ा दिया, बागी बना दिया। तुम्हारी मां ने मुझे कहीं कभी ना छोड़ा।
सर, वो अब उसकी तलाफी करना चाहती हैं।
किस बात की? तुम्हारा नाम तुम्हें दे देगी? 20 साल में और आदि तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, उसका क्या होगा? उसकी भी तलाफी करेगी? हम दोनों अकेलेपन में इंतजार करते थे और यही उम्मीद रखते थे कि कोई आएगा और ताहिर के बच्चों की खबर हम तक पहुंचाएगा ताकि हम उनसे मिल सकें। इस बात की भी तलाफी करेगी? मुझे कहानी मत सुनाओ। उसे बहुत सी बातों की तलाफी करनी है मुझसे। वकील कह रहा है सरपरस्त को उसके हक से महरूम करना एक जुर्म है। इन सब का जवाब उसे देना होगा। मुझे नहीं मालूम, शरीयत है, कानून है, इंसाफ है, जो कुछ भी है, इस मुल्क में अच्छा निजाम मौजूद है, कानून भी है, वो इन सब बातों का जवाब जरूर देगी, समझे?
ये लीजिए सर।
बहुत बहुत शुक्रिया।
और कुछ चाहिए सर?
नहीं शुक्रिया, ये लो।
आप करना क्या चाहते हैं?
मैं कुछ भी नहीं, मुझे तो कोई मतलब नहीं। कानून कानून उससे निपट लेगा।
मतलब आप मेरी वालदा की कंप्लेन करेंगे?
क्या मुझे ये हक नहीं है?
ठीक है, अगर आपका और आपके वकील का यही फैसला है एक तरफ रहने का और मेरी वालदा के मुखालिफ खड़े होने का, तो ये बात जान लें, फिर मैं उन्हीं की तरफ हूं।
तुम खाना शुरू करो। मेरी तो समझ में नहीं आता कि यह औरत बच्चों पर क्या जादू कर देती है। पहले तो तुम्हारा बाप था और अब तुम। समझ में नहीं आता मैं क्यों बार बार चोट खाता हूं और मेरे बच्चे हमेशा उसी का साथ देते हैं। 20 साल पहले भी यही हुआ और अब भी यही है। क्या हाल हो गया है मेरा। अस्सलाम वालेकुम बराती। शुक्रिया, इसी वजह से आपको फोन किया है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस बारे में हमारी सुबह बात हो रही थी, फिलहाल उसे आप रोक दें। नहीं, असल बात यह नहीं है, मैं पहले भी एक दफा गया था और चोट खा चुका हूं। पत्थर से टकरा गया था और जमीन पर गिर गया था। मुझे अच्छा नहीं लगता कि दोबारा गिरूं। आखिर ये चोट मैं कब तक खाऊं? फिलहाल आप इस बात को रहने ही दें, देखो क्या होता है। ठीक कह रहे हो तुम, शुक्रिया। क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुराने की तो कोई बात नहीं थी।
जी अच्छा फिरदौस साहब,
मेरे सामने बिलावजह मुस्कुराने की कोई जरूरत नहीं है।
एक्सक्यूज मी सर, मुझे साबिर साहब से मिलना था।
उस तरफ चले गए।
थैंक यू।
आ गया।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रुस्तम।
अस्सलाम वालेकुम।
ये मेरी बेगम है और ये रुस्तम है। बैठो। क्या खाओगे?
माफ कीजिएगा सर, आपने बुलाया तो मैं आ गया। आप अपने वालिद को तो जानते ही हैं, अगर उनको पता चल गया कि मैं यहाँ आया हूँ तो मेरी तो नौकरी गई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे इस मामले से दूर रखेंगे।
रुस्तम साहब, आप खुद इस मसले में शामिल हैं।
कौन सा मसला?
जो भी मसला हो चाहे।
ये क्या कह रही हैं साबिर साहब, तुम्हारा मसला? कसम से अगर मेरी नौकरी।
तुम फजूल में कसम वगैरह मत खाओ, मुझे बताओ भूल रहे हो उस रात तुमने साबिर से 5 लाख रुपए लेकर मालिक के मकान को दिए थे, या उस रात तुम साबिर के साथ गए ही नहीं थे और उसके वालिद के लॉकर की नकली चाबी भी नहीं बनाई?
रुस्तम साहब, तुम खुद इस मसले के दरमियान मौजूद हो।
ओ मेरे खुदा, मैं तो बर्बाद हो गया। ये
तुम
आप क्या कह रही हैं?
मैं और मेरे शौहर नहीं चाहेंगे कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। मतलब अगर साबिर के साथ रहोगे तो फिरदौस साहब की हिम्मत नहीं कि तुम्हें कुछ भी कह सकें।
मुझसे जो कहा गया था मैंने वही किया।
आराम से बैठ जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ।
बस तो फिर मुझसे क्या चाहते हैं?
कुछ भी नहीं, सोचा यहाँ आ जाओ और एक कप चाय तुम्हारे साथ बैठकर पी लें। तुम्हें बता दूं कि हमें तुम्हारे बारे में सब मालूम है और इसीलिए तुम हमारे साथ शामिल हो गए हो।
किस लिए? आखिर मैंने ऐसा किया क्या है?
एक काम तुमने कर दिया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था।
क्या किया है मैंने?
तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि आजकल मार्केट में क्या हो रहा है?
कुछ नहीं हो रहा वहाँ, हमेशा की तरह कुछ नहीं हो रहा। मैं तो सुबह सवेरे ही ऑफिस आ जाता हूँ और फिर वही रोज।
ये बातें नहीं करो रुस्तम, मेरा मतलब इन बातों का नहीं है।
फिर क्या बात है सर?
शायद मेरे भाई के बारे में तुमने इधर उधर से कुछ सुना तो होगा।
जी सर।
तो फिर मेरे भाई के बच्चों के गुम होने का भी सुना होगा।
कुछ बातें।
अच्छा, मेरे बाबा कह रहे हैं कि मेरे भाई का बेटा मिल गया है। कब ऐसा हुआ है? आखिर वो लड़का कब मेरे बाबा के पास आया है और कहां से?
मैं कसम खाकर कहता हूं साबिर साहब, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर मेरी इजाजत के बगैर इस मार्केट में कोई आ भी जाए तो
क्या हुआ? कुछ याद आ गया क्या?
वो भी हो सकता है।
कौन? क्या?
कहीं वही लड़का ना हो सर।
कौन सा लड़का?
वही मोहम्मद लड़का जनाब।
वो चिलगोजा झाड़ू वाला?
जी सर। दरअसल जब से वो यहाँ आया है फिरदौस साहब कुछ बदल से गए हैं। कभी बाहर उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, कभी होटल ले जाते हैं, कभी उसके लिए जेल चले जाते हैं। फिर जेल से आने के बाद कहते हैं कि उसके लिए 5-स्टार होटल बुक कराओ। पागल से हो गए हैं वो। मुझे तो उसी पर शक है। उसके अलावा मार्केट में कोई नहीं आया। जो इस लड़के के लिए किया है वो आज तक किसी के लिए नहीं किया।
कौन है?
मैं हूं बाबा जान।
अंदर आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम बाबा जान।
वालेकुम अस्सलाम। बैठो। ये सब रसीदें हमारे माल खरीदने की हैं। 10-15 दिन बाद बाग वाले फ्रूट तोड़ना शुरू करेंगे और लोड करेंगे। दिन रात हमारे पास सर खुजाने की फुर्सत नहीं होगी। और हाँ, उसमें से आधा माल बर्फखाने भेज देना। तुम बर्फखाने की तैयारी कर लो।
अभी वक्त मौजूद है बाबा जान।
वक्त कहाँ है? कह रहा हूं 15 दिन के बाद ट्रक के पीछे ट्रक माल आना शुरू हो जाएगा। अगर चाहते हो कि हमारा फ्रूट महफूज रहे तो बर्फ खाने की बुकिंग पहले होनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फ्रूट ताजा और मीठा रहे तो तुम्हें उसे बर्फ खाने में फौरन रखना होगा। अगर पहले बर्फ खाने की बुकिंग ना करवाई तो जितना माल हमारे पास आएगा यहीं का यहीं रह जाएगा। अगर बर्फ खाना बुक ना हुआ तो सारी दुनिया का फ्रूट भी अगर तुम यहां पर इकट्ठा कर लोगे या तो वो गल सड़ जाएगा या फिर वो सारा फ्रूट मवेशियों की खुराक बनेगा। तुम इन सब बातों को आखिर कब समझोगे साबिर?
लेकिन मैं किसी और बात के लिए आपके पास आया हूं बाबा जान।
किस बात के लिए? जो बात मैं कर रहा हूं वो ज्यादा जरूरी है।
इससे भी ज्यादा एक जरूरी बात है।
कुछ हुआ है क्या?
नहीं बाबा जान, मैं यहाँ इसलिए हूँ कि जो खबर आपने दी थी उस बारे में बात कर लूँ।
कौन सी खबर?
वही खबर जो आपने कल दी थी हम सबको। मेरा मतलब है कि ताहिर के बेटे की बात।
फिलहाल जितना बताना था बता चुका हूं।
बात में नहीं बाबा जान, अभी इसी वक्त।
तुम्हें क्या हो गया?
मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ मैं ये नहीं चाहता कि कोई आपको आके आपकी मोहब्बत और रहम दिली से फायदा उठा के बेवकूफ बना ले।
ये तुम क्या कह रहे हो साबिर?
ये बात आजकल बिल्कुल आम है, बेवकूफ बनाना। मुसीबत तो यह है कि अखबार नहीं पढ़ते आप, कोई इत्तला ही नहीं है कि लोग कैसे चोरी और धोखेबाजियां कर रहे हैं। लेकिन टीवी पर ड्रामे तो आपने देखे ही होंगे, कितने ड्रामे और फिल्में आपने देखी जिसमें यही सब चलता आ रहा है। बच्चे 20 साल के बाद मिलते हैं और सारा मालो दौलत लूट कर हमेशा के लिए फरार हो जाते हैं।
ये बात धोखा नहीं है, तुम परेशान ना हो।
पहली बात कि ये आप कह रहे हैं कि धोखा नहीं है, लेकिन लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। ये लोगों
की हालत के बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। तुम मुझे ये नहीं बताओ कि आजकल के लोगों के हालात किस तरह के हैं। हराम का लुकमा नहीं खाना चाहते ऐसे भी लोग हैं, उनका जमीर नहीं चाहता कि वो कोई गलत काम करें। पहली बात, अच्छा और बुरा हर जमाने में मौजूद होता है, दुनिया में हर तरह का इंसान है। कुछ लोग बाज़मीर होते हैं और कुछ लोग बेज़मीर। दूसरी बात, वो लड़का ताहिर का बेटा है, तुम बेफिक्र रहो।
लेकिन मैं शक में हूं बाबा जान, क्या कल आपने नहीं कहा था कि ताहिर का हिस्सा उसके बेटे को दे देंगे? अच्छा, कोई 20 साल बाद आपके सामने आया है और कह रहा है कि वो ताहिर का बेटा है, आपकी अपनी आधी दौलत उसे दे देंगे बस ऐसे ही, इसी मुंह से, बिल्कुल चुपचाप होकर? इस तरह नहीं होता है, कुछ प्यार भरी बातें करने या कसम खाने से कुछ नहीं होता है। अब आजकल सब कुछ साइंस में मौजूद है, एक डीएनए टेस्ट करवा लें और फिर सब
क्या
कुछ।
क्या कह रहे हो तुम? साइंस को मेरे सामने मत लाओ। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं करोगे, तुम इब्ने सीना और मैं मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा हूं। मैं खुद हवा में उड़ती चुड़िया के पर गिन लेता हूं, मुझे मत सिखाओ कि कौन क्या है। क्या सोच रहे हो? बीस साल पहले का तुम्हें याद है? तुम्हें मैंने एक गांव में भेजा था कि जाके देखो जिस औरत और बच्चों को पकड़ा है वो ताहिर के बच्चे हैं या नहीं। याद आया कुछ?
जी बाबा जान, आप तो जानते ही हैं मैं उसी वक्त चला गया था।
हाँ, तुम गए थे, तुम गए थे और उन्हें देखकर कहा कि वो नहीं है। लेकिन साबिर, मैं अस्पताल में था और मेरा दिल कह रहा था, मेरा दिल कह रहा था वो बच्चे ताहिर ही के हैं। तुम अपने चेहरे पे सजाई आंखों से देख रहे थे, लेकिन मैं अपने दिल की आंखों से देख रहा था। हम में से जरूर कोई एक गलत था, अभी मैं नहीं जानता कि कौन गलत था। अब ताहिर का बेटा वापस आ गया है अपने पैरों पर चलकर। मैं नहीं जानता कि वो सच कह रहा है या झूठ, लेकिन उसका गवाह उसके साथ है। उसकी मां को भी मैंने देखा है। मैं शायद अपनी शक्ल भूल सकता हूं, लेकिन ताहिर की बीवी की शक्ल नहीं भूल सकता। अपनी आंखों से देखा है कि वो ताहिर ही की बीवी है। दूर से अंधेरी रात में नहीं देखा, करीब से देखा है। इस तरह दिन की रोशनी में, समझे?
नहीं बाबा जान। एक सवाल और पूछना चाहता हूं। ये वही लड़का मोहम्मद है ना?
कल बर्फ खाने की बुकिंग करवा लो बस।
हेलो हेलो, क्या है जो मुझे खड़ी खड़ी घूर रही हो?
माफ कीजिएगा।
हेलो, सुनो, देखो मैं क्या कह रहा हूं, अभी इसी वक्त तुमसे मिलना चाहता हूं। नहीं, अभी इसी वक्त।
ये लीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। शक्कर इसमें डाल दूं? साबिर,
क्या है?
मैं कह रही हूं शक्कर डालूं? ये लो। साबिर, साबिर,
हाँ?
इसमें शक्कर मिली हुई है। अगर तुम्हें कहवा ही पीना था तो वहीं होटल में बैठ के पी लेते। क्या है, इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो जैसे मुझे कुछ मालूम नहीं?
अच्छा नहीं है ये, गाड़ी में सब कुछ तो तुम्हें बता चुका हूँ। खुद वही लड़का है, ताहिर का बेटा, कोई शक इसमें नहीं है। मेरे बाबा उसकी मोहब्बत में मर रहे हैं जैसे उन्हीं का बेटा हो, हवा में उड़ रहे हैं, पागल हो चुके हैं। कह रहे हैं ताहिर का हिस्सा उसके बेटे को दे दूंगा। इसका मतलब जानती हो तुम?
बिल्कुल जानती हूँ।
हाँ तो?
अच्छा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है?
अच्छा क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है?
सुनो मेरी बात, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें उनकी खिदमत और साथ की आदत हो चुकी है। मुसीबत यह है कि कल तक मालिक तुम्हारे बाबा थे और कल से तुम्हारे भाई का बेटा होगा, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है?
तुम मुझसे क्यों उलझ रही हो परिसीमा? 40 साल से मेहनत कर रहा हूँ इन सब दौलत के लिए, अपनी जवानी बर्बाद कर चुका हूँ, मुश्किलात उठाई हैं, उस पर तुम मुझे
कहा है? मैं सच क्यों बोल रही हूँ, क्या झूठ बोलूँ? मेरी खराबी यह है कि मैं सच्चाई बोल देती हूँ। शीशा बन गई हूँ तुम्हारे सामने ताकि तुम खुद को देख सको। अब अगर जो कुछ तुम देख रहे हो, अगर एक शख्स बगैर हाथ पांव के कमजोर और नौकर खसलत का है तो उसमें शीशे की गलती नहीं है, वो तुम हो साबिर, वो तुम ही हो।
मुझे नहीं कहो नौकर और डरपोक, नहीं कहो।
कहूंगी और हर दफा कहूंगी साबिर साहब। जानते हो क्या, तुम बिल्कुल हीरोइनची की तरह हो गए हो। जब वो नशे में होता है तो सोचता है कि कल जब सो के उठूंगा तो छोड़ दूंगा, लेकिन जब कल आ जाता है तो उसका नशा टूटने लगता है और उसकी वजह से वो कांपता है, फिर दोबारा कल की तरह नशा करने लगता है। रुस्तम को गिरबान से पकड़कर तुम चाबी बनवाने वाले की दुकान पर तो ले गए और अपने बाबा के लॉकर की चाबी भी बनवा ली, उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं, चाबी तुम्हारी जेब में है और तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि बाबा के कमरे में चले जाओ। तुम वही हो साबिर, यकीन करो तुम ऐसे इंसान हो जिससे कोई काम ठीक करने की उम्मीद ही नहीं है, तुम में किसी भी काम की कोई काबिलियत नहीं है। हाँ यही बात है बस। अच्छा क्या वो लड़का मिल गया है? तुम उसका अब क्या करोगे? मार दो, अगर इतनी हिम्मत होती तो अच्छा था। मैं तो ये कहूंगी किसी शख्स को तलाश करो, उसके हाथ पे कुछ पैसे रखो, उसे कहो किसी एक्सीडेंट किसी हादसे में कुछ कर करा दे, खत्म करे। अगर ये नहीं चाहते तो एक दफा, सिर्फ एक दफा मर्द बनो, हिम्मत करो, अपने बाबा के कमरे में जाकर उस चाबी का फायदा उठाओ। जब तक तुम्हारे बाबा को पता चलेगा पानी सर से ऊंचा हो चुका होगा, उस वक्त वो मजबूर होंगे कि आखिरी सांस तक तुम्हारे नौकर बने रहें। इतनी ही बात है। दरअसल मेरी ही गलती है, तुम वो मर्द ही नहीं हो जिसकी मुझे ख्वाहिश थी।
ऐसा तो नहीं बोलो परी सीमा।
क्यों नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुम खुद अपने साथ भी वफादार नहीं हो साबिर। मैं चाहती थी तुम्हारी जिंदगी में कुछ करके दिखाऊंगी, तुम्हारी जिंदगी बनाऊंगी, तुम्हें कुछ बनाऊंगी, लेकिन नहीं हो सकता है। जो काम भी कर रही हूँ नहीं हो रहा। तुम वही हो जैसे हमेशा से थे। मैं भी अनीस और जिवार की तरह हो जाऊंगी। कल तक वो दो थी और फिर तीन हो जाएंगी। बस यही होना था, यही मेरा मुकद्दर है।
ऐसा मत करो परी सीमा, तुम जानते हो मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता।
हाँ तो मुझ में भी तुमसे नाराजगी की हिम्मत नहीं। तुम्हें याद है कि किस हालत में तुम होटल में मेरे पीछे तक आ गए थे? तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे साबिर।
बताओ मुझे क्या करना है।
मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मर्द बनो। तुम सब मर्दों के दिलों में एक ही शिकायत है कि तुम अपने बड़ों की तरह क्यों नहीं हो सकते, क्यों तुम लोग उनकी तरह 8-10 पीढ़ियां नहीं रख सकते। लेकिन तुम लोग इस बात को भूल जाते हो। सुनो, वो रख सकते थे क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत थी, क्योंकि वो अपने सारे घर के खर्चे अपने कांधों पे उठाते थे। वो किसी भी बीवी के दिल में कोई ख्वाहिश नहीं छोड़ते थे, अपनी बीवियों की एक एक ख्वाहिश के लिए जान देते थे, पहाड़ बनकर खड़े हो जाते थे और सबके टुकड़े कर देते थे। कोई भी उनकी बीवियों में से अगर कुछ मांगती तो वो उसे लेने के लिए दुनिया के उस पार चले जाते, कोकाफ तक चले जाते और ले आते। लेकिन तुम लोगों का क्या होगा? तुम लोग तो अपने पांव पर भी खुद खड़े नहीं हो सकते, बल्कि अपनी जिंदगी गुजारने की जिम्मेदारी ठीक से अंजाम भी नहीं दे सकते। उसके बाद तुम इंतजार कर रहे हो कि एक औरत तुम पर भरोसा करे? तुम लोग वाकई खुशनसीब हो।
मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे मिलने के बाद ठीक हो जाऊंगा।
तुम ठीक हो जाओगे अगर सिर्फ जरा सी तुम में हिम्मत और ताकत मौजूद हो। अगर जरा सी हिम्मत और ताकत दिखाओगे तो, सिर्फ यही साबिर। अगर ऐसा नहीं हो तो ना तो तुम्हारी हालत ठीक होगी और ना ही तुम मुझे अपने पास पाओगे। साबिर, जिस तरह अचानक तुम मेरी और मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गई हूँ, उसी तरह तुम्हारी जिंदगी से चली भी जाऊंगी। मुझे बता दो तुमसे नहीं होता तो मत करो। अब यहां से हटो और दरवाजा बंद कर दो। मुझे अब सर्दी लग रही है साबिर।